ओम शांति। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति था, युवक, जिसके पास कोई काम नहीं था और उसे पैसों की सख्त आवश्यकता थी। उसके पास जो भी एक काम था, पहले काम, वो छूट गया था। तो काम की तलाश में यहां से वहां, वहां से वहां घूम रहा था, भटक रहा था। और वो एक ऑफिस में पहुंचता है जहां लिखा रहता है कि एक ऑफिस बॉय की आवश्यकता है। इंटरव्यू का समय लिखा रहता है। तो वो लड़का अंदर जाता है और फिर इंटरव्यू के लिए आता है। पूरा उसका इंटरव्यू होता है और वो जो मालिक होता है, मैनेजर, वो उसको कहता है कि ठीक है, आपको हम सिलेक्ट करते हैं, परंतु कुछ डिटेल्स और बाकी है जो हम आपको आपके मेल आईडी पर भेज देंगे। तो मेल क्या है आपका? तो वो लड़का कहता है, मेरे पास मेल आईडी नहीं है मेरा, तो क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर ही नहीं है। तो कहता है, क्या आज के युग में तुम्हारे पास कंप्यूटर ही नहीं है? तो तुम तो यहां काम करने के योग्य ही नहीं हो। बिना कंप्यूटर के आज के जमाने में, बिना मेल आईडी के कोई काम हो ही नहीं सकता है। ऑफिस यहां तो अगर मेल ही नहीं है और कंप्यूटर का तुमको कोई अभ्यास ही नहीं है, तो अच्छा तो यही होगा कि तुम चले जाओ, हमारे काम के नहीं हो तुम। तो वो युवक बाहर निकलता है, सोचता है अब क्या करूं। उसके पास 200 रुपए होते खाली, तो वो मार्केट की तो ओर जाने लगता है। और जाते जाते उसे एक आइडिया आती है। वो सोचता है, क्यों ना ये जो सब्जियां यहां बिक रही है मैं खरीद लूं और लोगों के घर घर में जाके बेचूं। तो सुबह से लेकर शाम तक ये काम करता है। शाम जब होती है तो उसको लगता है ये काम तो अच्छा है, थोड़ा सा फायदा तो हुआ इससे। तो दूसरे दिन फिर ऐसा करता है, तीसरे दिन फिर ऐसा करता है, धीरे 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 और मेहनत करता है और लगन से करता है। तो इस तरह से कई सालों तक करते रहता है। और फिर उसके पास थोड़ा उसका फायदा होने लगता है, तो अपनी एक दुकान खोल लेता है। और फिर धीरे धीरे और काम करता है और मेहनत करता है। तो वो धीरे धीरे 10 साल में बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन बन जाता है। तो उसके पास बहुत पैसे और बहुत उसकी जो कारोबार है बढ़ जाता है। तो जब इस तरह से कारोबार बढ़ जाता है, तो वो सोचता है कि थोड़ा इंश्योरेंस भी करना चाहिए। तो वो इंश्योरेंस की कंपनी के मालिक को घर पे ही बुलाता है। तो इंश्योरेंस की कंपनी का मालिक उसको सब समझाता है, कैसे कैसे इंश्योरेंस करना है क्या। और लास्ट में पूछते हैं, आपका मेल आईडी क्या है, मैं बाकी चीजें आपको मेल से बता दूंगा। वो कहता है कि मेरा तो मेल आईडी है ही नहीं। तो इंश्योरेंस का वो मैनेजर कहता है, अच्छा आपका मेल आईडी नहीं है और इतने बड़े आप अमेरिका में टॉप मोस्ट बिजनेसमैन बन गए, सोचो आपका यदि मेल आईडी होता तो आप क्या होते आज। तो कहता है, हाँ ऑफिस बॉय। संडे की अव्यक्त मुरली, ना उम्मीदों के संस्कार, उम्मीदी के संस्कार, होपलेसनेस के संस्कार को क्या करो, समाप्त करो। वो जो लड़का, वो युवक, यदि ये सोचता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, मेल भी नहीं है, उदास हो जाता, दुखी हो जाता, होपलेस हो जाता, तो शायद कुछ भी नहीं कर पाता। होपलेसनेस का जो संस्कार है, ना उम्मीदी का, ब्राह्मण जीवन में एक अभिशाप है। ये सोचना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, संडे की मुरली अदर कुमारों से मुलाकात। बाबा ने कहा इसका दशहरा मनाओ तो कहीं जाकर सतयुग में क्या होगी, दिवाली होगी। ये सोचना पता नहीं होगा कि नहीं होगा, दो चीजों में नाउम्मीदी आती है। कौन कौन सी? मुरली के आधार से। एक तो कर्म या सेवा, दूसरा पुरुषार्थ। संस्कार बदलता नहीं है, लोभ का, काम का, अहंकार, संस्कार नहीं बदल रहा है। सब कर लिया, ऐसे नहीं कि किया नहीं है। एक संस्कार ऐसा है जो पिछले 5 वर्ष 10 वर्ष से चल रहा है, मुरलियां सुन रहे, अमृत वेला कर रहे, प्लानिंग बना रहे, चार्ट लिख रहे, मधुबन में आ रहे, भट्टिया कर रहे, रोज क्लासेस रेगुलर सुनना, नोट्स निकालना, पॉइंट्स लिखना, सब कुछ कर रहे। परंतु एक संस्कार ऐसा है जैसे कि रोने का, किसी ने कुछ बोला तो आंसू तो बस तैयारी है बहने के लिए, बस बोलने की देरी है। खाली बोल दिया, ये तुमने काम ठीक से नहीं किया, बस 2 दिन नाराज। जिसने बोला वो भी सोचता है कौन सा बड़ा पाप कर दिया, वो भी सोचता है अगली बार से संभाल के रहना है इस व्यक्ति के साथ। सेंसिटिव व्यक्ति के साथ रहना बहुत मुश्किल काम है आजू बाजू वालों के लिए, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। बोल दिया कि 3 दिन नाराज, 3 दिन बात करना बंद। एक संस्कार है। हाँ, तो आत्मा प्रयत्न भी कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है, फिर भी नहीं बदलता, ना उम्मीदी। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया इसके लिए? महेंद्र भाई क्या उत्तर दिया है? ना उम्मीद नहीं बनना है, ना उम्मीदी के संस्कारों को भस्म करो, स्वप्न में भी ना आए, स्वप्न में भी कोई कमी ना रहे। क्या करना है, क्या स्मृति में लाना है? अगर एक ट्रायंगल निकाला जाए, त्रिकोण, यहां विजय है, यहां निश्चय है और यहां उम्मीद है, होप, फेथ और विक्ट्री। ये ट्रायंगल बाबा ने उसमें बताया है। निश्चय कौन सा, कौन सा निश्चय, कौन सा जन्म सिद्ध अधिकार है? विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमने बार बार विजय पाई है, पहली बार नहीं पा रहे। पहली बार ये संस्कारों को भस्म नहीं, इस संस्कार को भस्म नहीं कर रहे, इसके पहले कई बार ये संस्कार आया है, था और हमने उसे भस्म किया। ये अपवित्रता का संस्कार, ये विकार का संस्कार, ये वासना का संस्कार, ये उत्तेजना का संस्कार, ये क्रोध का, आवेश का, लोभ का, ईर्ष्या का, दुखी होने का, सेंसिटिव होकर रोने का, ईर्ष्या करने का, ये जो संस्कार है इस पर हमने कई बार विजय प्राप्त की थी। इसके लिए अब ऐसा नहीं सोचो कि इतना तो हमने कोशिश कर ली और फिर भी नहीं हो रहा है। दुनिया में जितनी महान आत्माएं हुई है, लौकिक दुनिया में, आध्यात्मिक जगत में, सामाजिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, सभी के जीवन में ऐसे कुछ पड़ाव आए कि उदास, दुखी हो गए थे कुछ समय के लिए, परंतु फिर वहीं से वो उठे। वॉल्ट डिज्नी, जिसका इतना नाम है डिज्नीलैंड में, उसको रिजेक्ट कर दिया था कितनी बार। स्टीव जॉब्स, आइंस्टाइन, 4 साल तक तो बोलते ही नहीं आता था उसको, तोतला बोलता था, बोलते ही नहीं आता था 4 साल तक। 16 साल तक जो एग्जाम दी उसमें फेल, उसके पिताजी ने कह दिया था ये बेटा जो है ये फेलियर है एकदम मेरा। एडिसन टोटल फेलियर। जितने ये सारे लोग हैं बिल गेट्स, इनके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें आई कि सब दुखी हो गए थे, नाराज हो गए थे एक समय, परंतु उसमें वो टिके नहीं लंबा समय तक, उस दुख में, उस नाउमीदी में। वहां से उन्होंने अपना नया एम्पायर खड़ा किया सक्सेस का। फेलियर जो है वो सक्सेस का ही एक पार्ट है। फेलियर जो क्या है, सक्सेस का ही एक पार्ट है। इसके लिए ये जो एक संस्कार है, होपलेसनेस, एक नया शब्द है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, सारा पुरुषार्थ किया जा रहा है परंतु वो नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए। अमृत वेला कर रहे हैं परंतु कोई अनुभव खास नहीं है, इसलिए एक आध्यात्मिक विषाद। एक होता है संसार के लोग डिप्रेस्ड है, एक है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारिया, अजीब सी डिप्रेशन है, और वो अच्छा डिप्रेशन है, थोड़ा सात्विक डिप्रेशन, ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, परंतु डिप्रेस इसलिए है कि ये एक संस्कार पर कितने समय से काम कर रहे हैं। 15 दिन तो लोप हो जाता है, 15 दिन के बाद पता नहीं कहां से आ जाता है, समझ में ही नहीं आता है। लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टूम, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वूम्ब, ऐसी कहावत है, जैसे बच्चा गर्भ से निकलकर बाहर आ जाता है और जो मर गए है वो टूम्ब, क्या कहते हैं उसको, कब्र से निकलकर बाहर आ जाता है, वैसे वो संस्कार बाहर आ जाता है, ऐसे लगता है खत्म हो गया है। वो जो माया पक्षी होता है फिनिक्स नाम का, जल जाता है, राख हो जाती है, अपनी राख में से फिर से खड़ा होता है। मिथक पक्षी है या नहीं पता नहीं, परंतु संस्कार भी ऐसे ही लगता है खत्म हो चुका है, चाहे वो क्रोध का, झूठ बोलने का, छिपाने का, कुछ भी हो सकता है। संस्कार इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, और वो सारे ऑटोमेटिक काम करते हैं, हमको ही नहीं पता ये कहां से है और क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको ज्ञात अज्ञात क्षणों में उनकी पुनरावृत्ति की है, रिपीट किया है उनको, 15-15 दिनों में एक बार रिपीट किया है, 1 मास में एक बार रिपीट किया है, फिर 6 मास की गैप दिया, फिर से उसको रिपीट किया, तो वो संस्कार कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, उसको केवल थोड़ी सी अग्नि चाहिए, चिंगारी, वो बाहर निकल कर आता है, वो कुछ भी हो सकता है, परंतु यदि वो आ भी जाए तो क्या होना है, दुखी हो जाना है, फिर आ गया क्या करेंगे, क्या करेंगे अगर वो फिर आ जाता है तो। अब्राहम लिंकन, उसकी अगर लाइफ स्टोरी पढ़ो तो उसमें पूरा लिस्ट ही है, लंबी लिस्ट है, एक ये इलेक्शन किया फेल्ड, ये किया फेल्ड, ये किया फेल, फेल 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 फेल, पूरा कंप्लीट फेलियर, तब कहीं जाके लास्ट में एक जगह है कि नाउ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसके पहले अबाउट 16-17 बार, परंतु वो रुका नहीं, बस यही एक चीज है। यदि इस संस्कार ने हमें हराया, काम क्रोध कोई भी हरा दिया, ठीक है, तो क्या उठना ही नहीं है वापस, प्रयत्न ही नहीं करना है, छोड़ देना है प्रयत्न को कि फिर से उठना है, गिरना नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु गिरना और फिर उठना, इसमें महानता है। इसलिए संस्कार कितना भी बड़ा हो, क्या होना है, हमको रुकना नहीं है, हारना नहीं है, हिम्मत, अच्छे से अच्छे तीव्र पुरुषार्थी भी कभी कभी हिम्मत छोड़ देते हैं, क्योंकि संस्कार जो है वो इतने सूक्ष्म है कि अपने आप काम करते हैं, और कुछ कुछ संस्कार शरीर की केमिस्ट्री, हार्मोन्स, फिजियोलॉजी, रसायन, उससे संबंधित है, काम वो सारों का संबंध देह से भी है, केवल वो माइंड से संबंधित नहीं है, साइकोसोमेटिक है। इसलिए व्यक्ति गिरता है और गिरने के बाद उसको लगता है इतना सारा कुछ तो किया, पवित्रता का चिंतन किया, पवित्रता के सम्मान लिए, पवित्रता पर मुरलियां पड़ी, फिर भी क्यों गिर रहा है। अगर व्यक्ति गिरे तो क्या करना है, अगर संस्कार वापस आए क्या करना है। एक तो बताया निश्चय कि मैं बार बार विजयी हुआ हूं, पहली बार नहीं है ये संस्कार, आने दो, हार नहीं माननी है। दूसरा, ये जो चीजें हो रही है, संस्कार आ रहा है, उनको एक परछाई समझना, शैडो है केवल, इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना उसको। 24 घंटे में 23 घंटे 50 मिनट शक्तिशाली गए, 10 मिनट में विकार के संकल्प, 10 मिनट में विकर्म पाप विकल्प हुआ, परंतु ये अब 10 मिनट के लिए दूसरे दिन क्या पश्चाताप में ही चला जाएगा? इस 10 मिनट के लिए दूसरे 24 घंटे पश्चाताप में बिताने हैं, इसलिए उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देना। आए और चले गए, फिर से पुरुषार्थ करना चालू करना है, नए संस्कार बनाते जाना पुरुषार्थ के संस्कार, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव पवित्रता ही है। ऊपर से विषय वासना विकार बाह्य सुख ये हम थोप रहे उसको, पर आत्मा को वास्तव में सब नहीं चाहिए, उसको पवित्रता ही चाहिए। और ये सारी चीजों में सुख है परंतु बहुत क्षणिक है और नहीं है, ऐसा ही है, खुजली की तरह है। खुजली भागवत में प्रह्लाद ने कहीं कहा है एक जगह कि विषय सुख जो है, प्रह्लाद जो दिखाया ना मेरे नकक्षु, विषय सुख जो है वो इचिंग खुजली की तरह है। खुजली होती है, फिर जितना खुजली करते रहो थोड़ी देर के बाद और खुजली करने की इच्छा होती है, फिर देखते थोड़ी देर बाद खून आ रहा है पर रुक जाते हैं, पर थोड़ी देर के बाद फिर करते रहता है व्यक्ति, करते रहता है। संसार के जो भी सुख है इच्छा की तरह है, खुजली की तरह है। तो मेथड क्या है, अब खुजली हो रही है क्या करें, उसको न करना, होने दो, थोड़ी देर के बाद अपने आप वो सेंसेशन चला जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो सेंसेशन अपने आप लोप हो जाएगा, क्योंकि खुजली की और करते ही तुरंत दुख मिला, पर दुख मिलने के बाद फिर भी हम रुकते नहीं है, थोड़ी देर के बाद फिर इच्छा होती है वही करूं, फिर किया खुजली, फिर उसके बाद छोड़ा, फिर उसके बाद दुख। पर संस्कार इतना है जैसे किसी ने कुछ खाया, जलेबी खाई, खाते ही उसका पेट खराब हो गया, बाकी सबका ठीक है, पर उसको ये समझ में आ गया ये मुझे सूट नहीं करती है, पर दो अभी खाई, अभी संकल्प कर लिया पावरफुल, अभी बिल्कुल छोड़ दिया हाथ से, देखना ही नहीं है उधर, परंतु दो दिन के बाद फिर बनी, तो फिर द्वंद्व चालू होगा, देख लेते एक बार हुआ तो हमेशा थोड़ी होता है, फिर एक बार खाया तो फिर एक बार वापस वैसा ही हो गया, फिर सोचा कि नहीं अब तो बिल्कुल प्रतिज्ञा ही करता हूं मैं, प्रतिज्ञा कर ली, एक महीना एक दो बार प्रलोभन आए पर जीते, फिर एक महीने के बाद ऐसा लगा कि अब तो विजयी हो गया, अभी तो कोई लेना देना ही नहीं है जिलेबी से, क्या उसका मुझे संकल्प ही नहीं है, पर अचानक फिर आ गई कोई कोई बना के ही लेके आया बड़े प्यार से, अभी अभी सेंटर पर बनाई है तो भावना तो रखनी है, तो फिर से खाया और फिर से हो गया, फिर तो इतना पावरफुल संकल्प कर लिया कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बहन लाए भाई लाए जो भी लाए बिल्कुल नहीं, और फिर 3 मास तक एकदम पक्का रहा, 3 मास तक बिल्कुल एकदम बहुत बार आई और दूसरों को दे दी, पर 3 मास के बाद फिर कहीं बाहर गया व्यक्ति, बाहर गया थोड़ा बिजी हो गया सेवा में, संकल्प तो थोड़ा कम ज्यादा हो गए, थोड़ी बहुत दूसरी माया भी आ गई, और फिर अचानक सामने आ गई, तो फिर ले लिया वापस। और इस बार फिर क्योंकि बाहर है तो इतनी पावरफुल स्टेज नहीं है, मधुबन में था तो पावरफुल स्टेज थी, अब उधर है इतनी थोड़ी कम पावरफुल है, तो फिर थोड़ा सा ढीला ढाला संकल्प किया अभी नहीं। और उस संकल्प में भी उसको चलाया 2-3 मास, पर 2-3 मास के बाद फिर कुछ हुआ। अगर 1 साल का ग्राफ देखा जाए तो 1 साल में कई बार वो गिरा है, कहीं 3 महीने के बाद, कहीं 4 महीने के बाद, और फिर कोई एक जबरदस्त माया आ गई। उस पीरियड में उसके संकल्प तो एकदम ढीले हो गए। तुम माया को बुलाते हो, बाबा ने मुरली में कहा है, तेरी आ जाओ, तुम माया को बुलाते हो। तो उस पीरियड में अब ये जो हुआ, संस्कार पक्का हुआ। फिर उसने बहुत पावरफुल संकल्प किया, 6 मास तक हुआ ही नहीं, और 6 मास के बाद एकदम हो गया, वही माया आ गई। तो फिर वो सोचते है, देखो 6 मास का पुरुषार्थ सब फालतू गया, व्यर्थ गया, सारा फोकस गिरने पर है। वो जो बीच का पीरियड है जिसमें हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, उसका सोच बहुत कम है, उसकी सोच, इसका मतलब हम ज्यादा महत्व किसको दे रहे हैं, गिरने को, और वो जो गिर रहे हैं उसके पश्चाताप में ही ज्यादा समय जा रहा है। 3 मास बहुत पावरफुल रहे उसका चिंतन क्यों नहीं कर रहे, वो जो गिरना है उसका चिंतन इतना ज्यादा क्यों, इसका मतलब उसको अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। और यही एक कारण है, क्योंकि अत्यधिक महत्व क्यों दे रहा, क्योंकि श्रीमत हाथ में, श्रीमत कहती है ऐसा नहीं करो, और फिर हो गया, वो है इतना पर पश्चाताप इतना, ब्राह्मण जीवन में गलतियां इतनी है पर पश्चाताप बहुत ज्यादा है, और वो पश्चाताप ही आगे के पुरुषार्थ को रोक देता है। ये सूक्ष्म मनोविज्ञान है कि व्यक्ति गलतियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। इसके लिए हम एक नई बात बता रहे हैं कि गलतियां हो गई, सीखो उनसे, पर बहुत ज्यादा उसका चिंतन, बहुत ज्यादा उसका मनन, बहुत ज्यादा उसको महत्व नहीं दो। छाया है, आई और गई, पवित्रता का जीवन है, बीच में आंधी आएगी। अब आंधियों का ही चिंतन करोगे तो वो जो आगे का पवित्रता का जीवन है उसका क्या होगा, ये आंधी क्यों आई, अब वो आई आप कॉन्शियस लेवल पे अभी सोच रहे हो, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब कॉन्शियस लेवल से आई है, उसका चेतन के संकल्पों का बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। और वो बनी कैसी है, रिपीटिशन, बार 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 हमने रिपीट किया। अब जो नई चीजें हैं, मुरली का चिंतन के संस्कार, नए संस्कार बनाओ, ज्ञान के संस्कारों का निर्माण करना है। कौन से संस्कार निर्माण करेंगे, ज्ञान के, कैसे, चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा, बैठो और ज्ञान एक दूसरे से शेयर करो। नए संस्कार क्रिएट करने हैं ज्ञान के, ज्ञान के संस्कार क्रिएट करना मतलब मुरली सुनाना ये नहीं है, चर्चा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग अर्थात एक टॉपिक रखा है सामने, 10 लोग मिलके बिल्कुल उसके बारे में ऐसा सोचे रैंडम कि नई आइडियाज निकले, सोचने पे मजबूर हो जाए, क्या है ये, क्या हो सकता है इसके बारे में। एक होता है ज्ञान के संस्कार खाली मुरली सुनाने से या सुनने से, भाषण देने से या भाषण सुनने से नहीं होते, चर्चा, क्रिएटिव वर्क चाहिए, तो ही नए संस्कार निर्माण होंगे। अब ये जो नए संस्कार निर्माण होंगे तो पुराने जो संस्कार है धीरे 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 दबते जाएंगे, दबते जाएंगे, दबते जाएंगे, और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जैसे वो व्हाट्सएप में 1 नंबर से मैसेज आया, ठीक है, 6 महीने तक कोई मैसेज नहीं आया, तो वो मैसेज धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, उसके ऊपर नए नए डालते जाओ, अच्छे अच्छे डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, नए नए आते जाएंगे। पर एक दिन यदि उसी व्यक्ति ने फिर मैसेज कर दिया तो वो मैसेज सबसे टॉप पे होगा, फिर तुम सोचोगे अरे ये मेरा 6 से 6 महीने का पुरुषार्थ सारा गया, ये संस्कार तो जैसे के वैसे है, क्योंकि उसकी तीव्रता वही है, वो आवेग, वो फोर्स जो 6 मास पहले था। मतलब यहां व्यक्ति ना उम्मीद हो जाता है, यहां दुखी हो जाता है, यहां सारी हिम्मत हार जाती है कि इतना पुरुषार्थ करने का भी क्या फायदा, संस्कार तो जस का तस, तस से मस भी नहीं हुआ, इंटैक्ट। मतलब हमने इतना जो 6 मास पुरुषार्थ किया वो संस्कार तो जैसे के वैसे ही है, वैसे के वैसे पूरी अपनी तीव्रता के साथ खड़ा हो गया आके, यहां क्या करना चाहिए अब, अब उत्तर बताओ। व्हाट्सएप का मैसेज नीचे चला गया था 6 मास, अभी 6 महीने के बाद ऊपर आ गया, क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे, डिलीट कर देंगे, डिजिटल सालवेशन आर्मी खड़ी कर देंगे, वो तो ठीक नहीं। सबसे पहली चीज, ज्यादा टेंशन नहीं लो उसका, आने दो, आया तो आया ठीक है। जैसे पहली बार नीचे चला गया था ना, इस बार भी नीचे जाए, छाया है, परछाई है, शैडो है, आया और चला जाएगा, उसको पढ़ना ही नहीं है, इग्नोर। उसी तरह ये व्यक्ति बहुत कम करता है। अब व्यक्ति करता क्या है, ये आया है, क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, मेरा पुरुषार्थ जो 6 महीने का था ठीक नहीं, अमृत वाला तो ठीक ही चल रहा था, फिर क्या हुआ, सब तो ठीक था। चलो फिर वहां दुखी होता है, फिर वहां उदास होता है, फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, फिर दूसरे दिन का छोड़ो, इतना दिन 3 बजे उठकर अमृत वेला किया, परिणाम ये निकला, दुखी। पुरुषार्थ में दुखी नहीं होना है, उदास नहीं होना है, हारना नहीं, कितना भी गिर जाओ उठो फिर से। 6 मास तक लगातार माया आई, माया ने परेशान कर दिया, हैरान कर दिया, 6 मास तक हर दिन विघ्न, तो क्या दुखी हो जाएंगे, हार जाएंगे? विंसेंट वॉन गॉग जो था, जिसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं, उसकी पेंटिंग्स, एक नया मोड़ दिया है पेंटिंग को उसने, चित्रकला को, सारे विश्व भर में उसकी एक एक पेंटिंग ऐसी है कि उसमें पता नहीं कितने भाव है। विंसेंट वॉन गॉग की 37 इयर्स तक केवल जिया, और वो जब 2100 से भी ज्यादा पेंटिंग्स, 850 से भी ज्यादा ऑयल पेंटिंग्स, अकेला खड़ा रहता था बस सूरज को देखते हुए, सुबह से लेकर रात तक लोग कहते थे पागल है, पेंटिंग करते रहता था सूरज को, सूरज का चित्र बनाते रहता था। वो उसके जीवन काल में एक ही पेंटिंग बेची उसने बस, और अभी उसकी एक एक पेंटिंग की बाप रे क्या कीमत है, डॉलर्स और लाखों में कीमत है, पर वो जब जिंदा था एक ही बेच पाया बस, पर उदास थोड़ी हुआ, दुखी थोड़ी हुआ। संसार में सारे विघ्न परिस्थितियां सब आएंगी, बड़ी बड़ी जो किताबें संसार में जो सबसे फेमस हुई है, वो जब पब्लिशर के पास गए, कितनी बार पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया, ये कोई छापने जैसी किताब है? वो रोवलिंग जो थी हैरी पॉटर वाली, हैरी पॉटर इस सदी की फैंटेसी नॉवेल्स में सबसे प्रसिद्ध किताब है, वो जब गई पहली बार जब उसने लिखा था, तो उसको तो 27 बार रिजेक्ट कर दिया, बोले ये कोई किताब है, कौन पब्लिश करेगा, पब्लिशर लेने को तैयार नहीं थे, पर उदास नहीं। ये सारे ही लोग, चाहे लौकिक के हो, परंतु चाहे, चलो अध्यात्म से उनका कोई संबंध नहीं था, परंतु ये लोग उदास नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, होपलेस नहीं हुए, फिर भी आगे बढ़ते गए। जब ये ऐसा कर सकते तो हम क्यों उदास हो जाए? निकृष्ट कर्म करने वाला, वो एक बार बताया था ना, हसन एक बार एक चोर के यहां रुकता है 1 मास तक, तो वो देखता है कि वो चोर रात को निकलता है चोरी करने, सुबह लौट के आता है, तो हसन संत होता है, सूफी संत, वो पूछता है क्या हुआ, वो कहता है कुछ नहीं हुआ, आज कुछ नहीं मिला, बहुत कोशिश की चोरी करने की, पर पहरा इतना कड़ा था कि अंदर घुस ही नहीं सका, तो बोलते अब क्या करोगे, अब क्या, रात में फिर कोशिश करूंगा, दोबारा जाऊंगा, दोबारा रात को निकलता है और दोबारा कहीं जगह जाता है, दूसरे दिन लौट के आता है खाली हाथ, वो हसन पूछते आज क्या हुआ, आज भी कुछ नहीं हुआ, तो अभी अभी क्या, अभी रात में और बाकी है, 1 मास तक रोज जाता है, रोज खाली हाथ लौट कर आता है, पर उदास नहीं होता है। तो वो हसन सोचता है देखो मैं तो भगवान को ढूंढने का इतना बड़ा महान कार्य कर रहा हूं, ये चोर निकृष्ट कर्म करते हुए कभी उदास नहीं होता, दुखी नहीं होता, होपलेस नहीं होता, और मैं कितनी बार सोचता हूं कि छोड़ो ये अध्यात्म, कुछ और करते हैं। तो अदर कुमारों से मुलाकात में क्या कहा बाबा ने, ना उम्मीदी के संस्कार को खत्म करो, इसका दशहरा करो तो दिवाली होगी सतयुग में। ये नहीं भूलो कि ये, ऐसा नहीं कहो कि हमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होता नहीं, बदलता नहीं, चाहे पुरुषार्थ चाहे कर्म, सेवा भी, ये जमीन पर सेवा नहीं होगी। पहले से ही हमने बंजर भूमि भव का वरदान ही दे दिया है। कुछ समय रहे वहां पर, कोई नहीं निकला। हम ही शापित करते हैं भूमि को कि यहां से कोई निकलता नहीं। शायद हमारी टेक्निक गलत है, शायद हमने अभी तक वो सब नहीं किया जो करना चाहिए था, शायद पवित्रता में गड़बड़ है, शायद सकाश नहीं पहुंच रही है, शायद यहां का वातावरण ही शक्तिशाली नहीं है। ये सब चिंतन तो हमने किया ही नहीं और हमने सीधा कह दिया अकल्याण भव वहां की आत्माओं का, इनका कुछ नहीं हो सकता है। इनको दो बार माउंट अबू लेके गए, सब कुछ देखा है इन्होंने, फिर भी नहीं आते। हम ही शाप दे रहे हैं उनको अब कि इनको छोड़ो अब। जब हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि कोई पति है 20 साल तक पत्नी को सताया, 20 साल तक विघ्न डाले, 20 साल तक उसको ज्ञान में चलने से रोका, पवित्रता और सबके लिए बंधन डाले, और 20 साल के बाद वो पति ज्ञान में आ जाता है, तो जब वो विरोध कर रहा था तब भी तो देवकुल की आत्मा थी कि नहीं थी? थी ना। तो देवकुल की आत्मा ऐसा सब करेगी? तो इसका मतलब हमें ना उम्मीद नहीं होना है, सेवाओं में भी ना उम्मीद नहीं होना है, चाहे कोई कितना भी विरोध करे। और सबसे अच्छी बात तो यह है, जो जितना अधिक विरोध करता है वो एक दिन उतना ही अधिक सहयोगी बनेगा। जो जितना विरोध करता है वो उतना ही पुरुषार्थ में आगे जाएगा आगे, ये भी है, क्योंकि उसमें झूठ नहीं है, आडंबर नहीं है, उसके विचार ऐसे है, वो ऐसा सोचता है बस। और जो बीच वाले हैं वो तो उधर भी ढीले रहते हैं, यहां आने के बाद भी ढीले ही रहते हैं। तो ये थी पहली पार्टी से मुलाकात। तो इसमें उत्तर क्या है? निश्चय। उत्तर क्या है? विजय को याद करना। उत्तर क्या है? हार को इतना महत्व नहीं देना। पांडव अर्थात विजयी हाय हाय करने वाले नहीं, हार जो खाएंगे वो हाय हाय करते, पांडव अर्थात वाह वाह करने वाले। पांडव को बाबा ने 3 वरदान दिए है, सदा विजयी, पांडवपति, 7 मास्टर सर्वशक्तिवान। ये अपने वरदान याद रखना। स्वप्न में भी विजय है, स्वप्न में भी विजय हो, स्वप्न में भी हार ना हो, ऐसा जीत का नशा हो। जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, हम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेंगे? और इतने महान कार्य में चलो अगर नीचे गिर भी गए ना तो भी कुछ नहीं, उनसे तो अच्छा ही है जो संसार में निकृष्ट कर्म में जीत रहे हैं। ये जो जीत है महान जीत है। तो सबसे पहले तो अपने आप को कभी भी ना उम्मीदवार। फिर बाबा ने भाग्य की भी याद दिलाई है, ऐसा कभी सोचा था कि ऐसा भाग्य मिलेगा? होपलेसनेस, डिप्रेशन के जो भी संकल्प है उसको हटा देना है। एक दूसरी पार्टी से मुलाकात क्या कहा था? होली हंस। तो आप सब बताओ क्या क्या कहा था उसमें? ये क्लास मेडिटेशन हॉल में नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ पर चर्चा होगी। ये क्लास कम है, चर्चा ज्यादा है। बोलो। होली हंस अर्थात, होली हंस अर्थात मोती चुगने वाला। क्या हंस वास्तव में ऐसा करता है? ये दूसरा एक प्रश्न है। ऐसी कहावत है कि भारतीय स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मानसरोवर नाम का एक हिमालय पे बहुत बड़ा लेक है, वहां पर ये रहते हैं, वहां से भारत में बीच बीच में आते रहते हैं। तो ये जब, तो एक गुण क्या है इनका? सरस्वती देवी का वाहन है वो, हंस मोती चुगता है। दूसरा क्या करता है? वो श्वेत होता है। तीसरा स्वच्छ होता है, नीलशीर को अलग करता है, और आकर्षक होता है, सफेद होता है, उड़ता है, और इनोसेंस, निराकस्ता, निर्मलता का प्रतीक है वो। और जो सन्यासियों में कैटेगरीज है, कुटीचक, बुद्रुक, हंस और परमहंस, 4 कैटेगरीज है। उसमें हंस होता है एक, और एक होता है परमहंस, एक उसके भी ऊपर होता है अवधूत। तो परमहंस अर्थात विवेक का प्रतीक है हंस, विवेक, विजडम, डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अलग करता है वो, सत्य क्या असत्य क्या, नित्य क्या अनित्य क्या, सार क्या असार क्या, क्या करना है क्या नहीं करना, मनमत क्या परमत क्या श्रीमत क्या, ये सब अलग करने वाला, नीरशीर को अलग करने वाला दिव्य बुद्धि। तो यहां बाबा ने क्या कहा, तुम सब कौन हो, श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्मा है, बगुलों के साथ रहते हुए भी स्वयं को क्या समझो, होली हंस समझो, मैं अलौकिक न्यारी प्यारी आत्मा हूं ये समझो, हम उनसे अलग है, डिटैच रखना है अपने आप को। और दूसरा, बगुला हंस जो होता है उसके पंखों में पानी नहीं स्पर्श करता है, पानी स्पर्श नहीं करता है उसके पंखों, वाटरप्रूफ। तो स्वयं को डिटैच रखना सभी के बीच रहते हुए, वो मायावी है पर तुम माया जीत हो तो उनका प्रभाव तुम्हारे पर ना हो, तुम अपना प्रभाव उनके ऊपर डालो। नहीं तो ब्राह्मण आत्माएं जब मधुबन में रहती है तो सब ठीक चलता है, जैसे ही यहां से बाहर जाती है और वहां के लोगों के साथ पुराने दोस्त मित्र संबंधी शादी और वो सारा जो उस वातावरण में जाती है, यहां है तो मधुबन के, वहां है तो उनके, दोनों का बैलेंस है, यहां है तो पूरी मधुबन योगी जैसी दिनचर्या है सुबह से लेकर रात तक, उधर है तो उन जैसी दिनचर्या है, एडजस्ट अच्छा बैलेंस कर रहे हैं। पर ये हमारा जीवन है ही नहीं, ये तो धोखा हो रहा है, आत्मवंचन है, सेल्फ डिसेप्शन है। इधर है तो यहाँ की दिनचर्या, उधर है तो वहां की दिनचर्या, यहाँ है तो ब्राह्मणों का संग, वहां है तो संसारी व्यक्तियों का संग, यहाँ है तो ज्ञान की चर्चा, वहां है तो पॉलिटिक्स और फिल्मों की चर्चा, इधर है तो इधर के, उधर है तो उधर के, स्प्लिट पर्सनैलिटी, खंडित व्यक्तित्व। तो अपने आप को वहां उस वातावरण में रहते हुए भी सेफ रखना, उसके लिए क्या करेंगे, कुछ स्थूल बातें कुछ सूक्ष्म बातें, स्थूल पहले, स्थूल बातें वस्त्र, सन्यासी जो होते हैं ना श्वेत, वो उनके भगवे वस्त्र क्यों पहनते हैं, वो उनको याद दिलाते हैं हम ये लोग नहीं है, ये संसारी है, हम अलग है, ये संसार में डूबे हुए हम अलग है, अब उनको स्वयं को याद दिलाते हो, राख भी क्यों लगाते है? याद दिलाने के लिए राख लगाते हैं वो लोग कि न संसार, ये देह नश्वर है, संसार नश्वर है। तो संसार में रहते हुए एक ब्राह्मण आत्मा जिसको ऑफिस में काम करना पड़ता है, जिसको बॉस और उसके जो कॉलीग्स है या जूनियर्स है उनके साथ रहना पड़ता है, कैंटीन जाना पड़ता है, कॉलेज में है या फिर कहीं और है, जॉब चालू है, कंपनी में है, उनके साथ रहते हुए कैसे स्वयं को सेफ रखे, कुछ स्थूल बातें और कुछ सूक्ष्म। स्थूल में क्या क्या, बैच, पर कई लोग ऐसा बैच लगाते हैं इतना छोटा, यहाँ पर जो बटन वाला, वो अगर कोई पूछे बैच नहीं है कि ये है, अगर कोई और दूसरों के लिए सेफ भी है ही नहीं, दोनों का इतना सा लगाते, इतना सा इधर दिखता भी नहीं वो बटन बैच, अच्छा ये भी नाम भी है उसको बटन सब, हाँ चलो वहां अलाउ नहीं होता, अंदर तो लगा सकते। तो हमारी धारणाओं को छिपाना नहीं है, विरोध होगा परंतु अगर हम निरंतर वही करते रहेंगे ना तो फिर कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे मान जाएंगे। सरदार जी अपनी पगड़ी निकालता है क्या, उसको लगता है ये लोग क्या कहेंगे, अरे मैं इधर ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, निकालो इसको, ये लोग कैसे क्या सोचेंगे, ये लोग, वो सोचता है ऐसा कभी, कभी नहीं। फिर सबसे पहला तो ड्रेस, दूसरा ड्रेस कौन सा, व्हाइट श्वेत, विरोध करने दो, करेंगे, बोलने दो जो करना है, बोलने दो जो बोलना है, जो करना है करने दो, कफन पहना है अब निकालो नहीं इसको। हाँ वो चीज दूसरी दुनिया वाले बहुत सारी बताते हैं, ये हमको पहनना पड़ता है, ये वो यहां त्याओ, परंतु ये वस्त्र कवच है, व्हाइट सुरक्षा कवच है, ये बैच सुरक्षा कवच है, तीसरा है भोजन की धारणा, कुछ भी करने दो, हम हमारी जो धारणा है वो है, भले जाओ उनके साथ होटल में, जाओ जहां जाना है वहां जाओ, बैठो पर खाना नहीं, अपने लिए दूसरा मंगाओ, फ्रूट प्लेट मंगाओ या जूस लो। युक्ति तो निकालनी है, जिसको करना है करने करेगा, नहीं तो कोई तो कहते अरे नहीं हमको करना पड़ता है, नहीं तो नाराज होंगे ये वो, और खा भी लेते, पर वो संस्कार भी तो क्रिएट हो रहा है। पर हम जब अपनी धारणाओं पर अडोल रहेंगे तो वो धीरे धीरे वो मानेंगे, झुक जाएंगे। बल है ना नियमों में, मर्यादाओं में, कुछ स्थूल बातें हैं, कुछ सूक्ष्म बातें, जैसे और दूसरा हाँ ट्रैफिक कंट्रोल भी है, और स्थूल में जैसे मदद लेना बहुत ज्यादा, ये ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है, छोटी छोटी चीजें देना संस्कार है, लेना संस्कार नहीं है। लोगों की कितनी भी भावना होती है, एक सेंटर की ब्रह्मा कुमारी बहन जा रही थी, एक भाई बड़ी पोस्ट पर था, अभी अभी ज्ञान में आया था, तो उसको लगा बेचारी जा रही है, तो उसकी स्कूटर थी, बहन जी प्लीज बैठ जाओ ना, तो वो सोचने लगी नहीं, वो कहता प्लीज, मतलब उसको बहुत अच्छा भाई था, उसकी भावना भी अच्छी है, उसको तो बिल्कुल ये हो गया कि बेचारी बहन जी है इतना दूर पैदल जा रही है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो इसकी भावना को नहीं दुखाना, बेचारा इतना अभी अभी तो ज्ञान में आया, हमने ही कोर्स कराया, बैठ जाओ और जाओ। दूसरा ऑप्शन उसको जो है वो बता देना, उसको भी समझ में आ जाए, टूटती है भावना तो टूटने दो थोड़ी सी, उसका भी उसको बल मिलेगा, फिर धीरे धीरे उसको भी समझ में आएगा कि ये लोग कौन है। तो जरा भी अस्वच्छता नहीं, अगर जरा भी अस्वच्छता है तो होली हंस नहीं, इसके लिए स्वयं को चेक करो, कहां तक होली हंस बना हूं, कहां तक पवित्रता की धारणा है, कहां तक स्वच्छता है। होली हंस अर्थात कुछ भी वो गंदा खाते हैं, गंदा बोलते हैं, सारे शब्द मुरली में आए हैं, ना तो चुगने वाले, ना तो नीचे की बातों को लेने वाले, सदा स्वयं को डिटैच रखना हरक से, और संसार में रहते हुए तो बहुत ज्यादा ये संकल्प निरंतर हो कि मैं ये हूं, भले उनके सामने हमें हाजी करना पड़ता है या वो बॉस है या जो भी है, परंतु धारणाओं की जहां बात है वहां पर कुछ नहीं, नहीं तो संसार में कंपनियां और उसमें बहुत कुछ होता है, ऐसी सारी चीजें, वो जॉब छूट जाए तो चलेगा। हम जहां एक बार जहां थे बहुत पहले, हमारे बॉस हमको कहते थे अपना रेजिग्नेशन लेटर जेब में ही रखना, कुछ हुआ तो दो और निकलो। ज्यादा किसी की चाटुकारिता, फ्लैटरी, फ्लैटरिंग और ये सब नहीं, जहां सम्मान की बात है वहां हमारा अपना व्यक्तित्व है। हाँ उसमें हम खाली आपका जॉब कर रहे हैं, बाकी हमारी जो पर्सनल लाइफ है उससे आपका कोई लेना देना नहीं, पर्सनल जो धारणाएं हैं उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ कमेंट्स करते रहो जो करना है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये थी हंस बगुले की बात। अब आते हैं मुरली पर। तो मुरली कर्मातीत, सात पॉइंट्स यहां पर बाबा ने पावरफुल पॉइंट्स बताई है परिभाषा में। कर्मातीत स्थिति अर्थात आवास से परे स्थिति, कर्मातीत स्थिति अर्थात व्यक्त आकर्षण से परिस्थिति, थर्ड कर्मातीत स्थिति अर्थात शक्तिशाली स्थिति, फोर्थ कर्मातीत स्थिति अर्थात न्यारी और प्यारी स्थिति, फिफ्थ कर्मातीत स्थिति अर्थात इस स्थिति का यदि एक सेकंड भी अनुभव किया तो क्या होगा, सारे दिन भर विशेष शांति की शक्ति का अनुभव होगा, एक सेकंड भी अनुभव कर किया। नेक्स्ट कर्मातीत स्थिति अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति, और सेवेंथ कर्मातीत स्थिति अर्थात हर कर्म सफलता होगी। ये सात बातें बताई है कर्मातीत स्थिति के विषय में। एक एक पॉइंट का अनुभव करना है, सबसे पहले बताया आवाज से परे, क्या सारा समय आवाज में ही रह रहे हैं या आवाज से परे भी जा रहे हैं। सुबह हमने चर्चा की थी 8 अवस्थाओं की, ए बी सी डी ई एफ। ये ए बी सी डी रोज योग में आनी चाहिए। योग में बैठे ए बी सी डी ई एफ, बिना इन ए बी सी डी ई एफ के योग पूरा होना ही नहीं चाहिए। ए फॉर आत्माभिमानी स्थिति, ए फॉर अशरीरी स्थिति, ए फॉर अव्यक्त स्थिति, इन तीनों स्थितियों का अनुभव। बी फॉर बीज रूप, सी फॉर कंबाइंड, डी फॉर देही अभिमानी, ई फॉर विदेही, एफ फॉर फरिश्ता। इसका डिटेल सुबह हम चर्चा कर चुके हैं। नहीं वो जे है, पर ज्वालामुखी बीज रूप में आ जाता है। तो 8 अवस्थाएं हैं, तो सबका अनुभव। और कर्म करते समय विशेष 2, देही अभिमानी और विदेही। देही अभिमानी और विदेही का ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर्म करते समय। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं, अर्थात देही अभिमानी। विदेही अर्थात करण करावनहार मैं आत्मा, करणहार देह और मैं डिटैच, ये विदेही। तो इसका अभ्यास करना। तो पहले था कर्मातीत स्टेज, अर्थात कर्मातीत अर्थात वो नहीं मर जाने के बाद जो आती है वो नहीं। कर्म या पहले कर्म मत, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कर्मातीत नहीं बनना है। अभी वैसे मूल्यों में आता है कर्मातीत तो तब कहा जाएगा जब आत्मा परम धाम में है, एक्सेप्टेड। वो एक डेफिनेशन है, पर कर्मातीत की बहुत सारी परिभाषा है। वो वाला कर्मातीत तो हमें करने की जरूरत नहीं, अपने आप होंगे। पर अभी कर्म के प्रभाव से, एक दूसरी परिभाषा है, कर्म से परे, कर्म के प्रभाव से परे, ये बहुत सारी परिभाषा है। तो जगदीश भाई ने 16 डेफिनेशन दिए कर्मातीत स्थिति की, केवल से कर्मातीत स्थिति की। तो यहां बाबा जो डेफिनेशन दे रहे वो है बियॉन्ड साउंड, अर्थात साइलेंस, स्थूल साइलेंस। एक दूसरा व्यक्त आकर्षण से परे, संसार में जो भी आकर्षण है हम अपने आप को सबसे अलग करते जाए। आकर्षण में जो दोष है उसका चिंतन करो, फॉल्ट फाइंडिंग, अवर्शन थेरेपी। मेडिकल में अवर्शन थेरेपी है। किसी को स्मोकिंग छोड़नी है, स्मोकिंग के प्रति अपने मन में धीरे धीरे घृणा उत्पन्न करो। दारू छोड़नी है, अवर्शन थेरेपी, अवर्स, उसके अवगुणों का सोचो, उससे क्या नुकसान होता है सोचो, उससे सोचो कितनी बार मैं गड्ढे में गिरा, कितनी बार पैसे खराब हुए, कितने संबंधों में क्या 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 हुआ। जो चीज को छोड़ना है उसको, हाँ वो भले होने दो, वो छाया है, दिन भर तो स्ट्रांग रहो, वो धीरे धीरे छाया खत्म हो जाएगी। क्योंकि शराबियों को जैसे शाम होती है अपने आप कदम बढ़ने लगते हैं मधुशाला की तरफ। दिन भर में एक संकल्प करते रहता है व्यक्ति, मैं आज ये करूंगा वो करूंगा, आज से छोड़ दिया। पर जैसे ही शाम होती है, शाम जैसे हुई कि पता नहीं वो संकल्प कहां विलीन हो जाते और अपने आप बिना कोई बताए कदम अपने आप चलने लगते हैं, मैं खाना, मधुशाला, व्यक्त आकर्षण। तीसरा बताया शक्तिशाली स्थिति, कर्मातीत स्थिति अर्थात शक्तिशाली स्थिति है। कमजोर नहीं, वीक नहीं, वीक नहीं बनना है। कमजोर सबसे पहले संकल्प होते हैं और फिर व्यक्ति विकर्म करता है। डायरेक्ट विकर्म कभी नहीं करता है, संकल्प में धीरे धीरे स्वीकार करता है पाप को, परिणाम धीरे धीरे सोचना कम करता है। फिर बताया कर्मातीत स्थिति अर्थात न्यारी प्यारी स्थिति, न्यारी अर्थात डिटैच, प्यारी अर्थात लविंग। काम डिटैचमेंट पर करना है, लव पर कम, लविंग बनाने में काम नहीं करना है। प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ कौन सा है, न्यारा बनने का। प्यारा बनने का पुरुषार्थ करोगे तो फंस जाओगे, प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना कभी, न्यारा बनने का पुरुषार्थ करो। नेक्स्ट बताया 1 सेकंड अनुभव करो इसका, तो सारे दिन भर अनुभव होगा। तो अमृत वेला कम से कम इस स्थिति का अनुभव, आवाज नहीं, आवाज से परे, आकर्षण से परे, संसार से परे, देह से परे, मैं आत्मा परम धाम में, जो कहा बीज रूप और कंबाइंड स्टेज में हूं, उसका अनुभव। अगला, सफलता, कर्मातीत में सफलता मिलेगी ही मिलेगी हर कर्म में। और बताया बाप समान संबंध स्थिति है, तो ऐसी सात बातें हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए शिल्पा बहन, ये अवस्था लाने के लिए क्या करना है? दो शक्तियां चाहिए, कौन सी? समेटने की और समाने की शक्ति, दोनों में क्या अंतर है? समेटना और समेटने में हमारे, हम चित्र में क्या दिखाते हैं? हम पेटी दिखाते हैं ना, बोरी बिस्तर, किसको समेटना है? संकल्प को समेटना है, मन बुद्धि को समेटना है, जो विस्तार हो गया है उसको समेटना। विस्तार या समेटने का ज्यादा बाबा ने विस्तार नहीं किया है, क्योंकि समेटना है ना इसके लिए उस पॉइंट का भी विस्तार नहीं किया है। इसमें बाबा ने एकाग्रता की शक्ति को छोड़ा, एकाग्रता चाहिए, ज्यादा फोकस किया है समाने में, जो विस्तार हुआ है उसको समा दो। ठीक है, अभी तुम्हारे दो संस्कार बहुत पक्के हो गए हैं, कौन कौन से? भक्ति के और दूसरा विकारी जीवन के। ये दो संस्कार जन्म जन्मांतर के पक्के हो गए। एक तीसरा संस्कार भी पक्का है, वो बोल दिया हमने, ना उम्मीदवादी का। तो ये तीन संस्कार मुरली में फोकस किए गए। एक तो भक्ति के संस्कार, पहले उधर भक्ति करते थे ज्ञान में आने का, शिव बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा ये कर दो, सेंटर के लिए जमीन दे दो, रिट्रीट सेंटर दे दो, माताओं को भेज दो सेवाओं के लिए, चलो ठीक है, कहीं और तो नहीं जा रहे, उसी से बोल रहे, पर वो भी भक्ति है, बाबा 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 शिव बाबा शिव बाबा शिव शिव बाबा शिव बाबा, हाँ माता माता है, माता है होती ना, शिव बाबा का जाप करती है, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, ओम शांति भी बोलती है तो शिव बाबा के भक्त। यहाँ पर भी दो कैटेगरी है, एक भक्त कैटेगरी, एक ज्ञानी कैटेगरी, यज्ञ में एक है भक्त कैटेगरी, फरियाद सिकिलते भगत तो एक है मांगते रहते हैं, याचना करते रहते हैं, शिव बाबा को कुछ कुछ ऐसे बैठते ना, मैंने बाबा की कुटिया में ऐसे ऐसे करते रहती है कुछ ये योग चालू है क्या चालू है कि मांगना चालू है नहीं ऐसे करते ना बाबा के सामने बैठ के ऐसे चालू रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। अच्छा, करंट की वजह से अपने आप हो रहा है पावर आ रही है, हाँ फिर ठीक है। तो खुशी में तो एक है भक्ति करने के संस्कार, भक्ति करने अर्थात मांगना, याचना करना, प्रेम दे दो, केयर दे दो, हम बीमार है हमको आके देख लो, हम तुम जब बीमार थे तो हमने आके देखा था, कोई तो उनको बताए, फोन करके बताओ हम इधर हॉस्पिटल में है, हम बीमार है चिंता ज्यादा हो जाती है जब एडमिट होते हैं ना, तो फटाफट सबको इन्फॉर्म कर दो, सबको सबको बताओ, इसको भी बताओ, उसको बताओ, उसको बताओ, तो ये थोड़ी चिंता हो जाती है व्यक्ति को तो मांगना कुछ भी नहीं चाहिए, प्रेम, सहयोग, सहायता, प्रशंसा, स्तुति, केयर, अटेंशन, सम्मान, मान, नाम, इस चीज की हम भिखारी नहीं है, ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए, प्रसिद्धि, फेम, ग्लोरी, नेम, ये सब पीछे आने दो, सारी दुनिया हमारे पीछे, हम उसके पीछे सारी दुनिया हमारे पीछे और हम उसके पीछे। तो दो चीजें, दो चीजें संसार में महत्वपूर्ण है, कौन सी? संपत्ति और संबंध, दो इधर लगा दो। दो प्रकार की बुद्धि है, एक भटकती वाली बुद्धि, एक सार में स्थित होने वाली बुद्धि। चार प्रकार के विस्तार बताए बाबा ने, कौन कौन से? महेंद्र भाई, चार प्रकार के विस्तार। कमलेश भाई, देह का भान, इसका बच्चा, उसका बच्चा, जवान, फलाना ऑक्यूपेशन। दूसरा, देह की स्मृति, देह के संबंध, देह के पदार्थ। ये चार नहीं है, और भी बहुत है, पर देह की भाषा, इधर आ गया, उधर की भाषा मिल गया, उधर की भाषा वाला कि बस दोस्ती हो गई, दोस्ती तैयार। देह का स्थान, तुम भी पंजाब हम भी पंजाब, तुम भी महाराष्ट्र हम भी महाराष्ट्र, तुम भी मुंबई हम भी मुंबई, तुम भी चंडीगढ़ हम भी चंडीगढ़, तुम भी बिहार हम भी बिहार। चलो थोड़ा नक्की का राउंड लगा के आते हैं। फिर आज शाम का क्या प्रोग्राम है? शाम का कुछ बना रहे हो क्या? हाँ तो चलो कोई विशेष हाँ उसी, चलो आज डोसा बनाते हैं शाम को अलग से। तो देह की भाषा, देह का स्थान, देह के धर्म। हम उधर भी ब्राह्मण थे, उसका नशा भी है। इस ब्राह्मणपन का नशा कम है, वो जो उधर का लौकिक वाला ब्राह्मण थे ना, उसका नशा अभी भी चल रहा है। कोकनस्थ ब्राह्मण। देह का धर्म, देह के भोग, देह की वासनाएं, देह की इच्छा, देह की प्राप्ति, देह के कर्म, देह का जॉब ऑक्यूपेशन, देह की स्मृति, ये सब देह से संबंधित चीजें हैं। और देह का पद, देह का नाम, और लौकिक पढ़ाई, देह की पढ़ाई, उसका भी नशा। क्या देह का? हाँ, संबंध, वो तो मुरली में आ गया है, चार छोड़ के और भी कुछ? तो ये सारे पिंजड़े हैं, बंधन ही बंधन है, बांधते हैं व्यक्ति को। तो ये सारे विस्तार से क्या करो? सार कर दो। सार में लाने के लिए दो शक्तियां चाहिए, समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। और दो संकल्प दिए बाबा ने, मैं आत्मा बिंदु और बाप बिंदु। तो ये सारे विस्तार को समा दो, ये सारे विस्तार को समेट लो। अगर समेटते हो और समाते हो तो उसकी निशानी क्या है? बुद्धि एक सेकंड में जहां चाहिए वहां बुद्धि को लगा सकोगे। इसके लिए एक उदाहरण दिया है, कौन सा? हाँ, ब्रेक, सवारी। जैसे ब्रेक, तो आध्यात्मिक ब्रेक प्रणाली, आध्यात्मिक ब्रेक प्रणाली तैयार करनी है, स्पिरिचुअल ब्रेक सिस्टम। हमारी ब्रेक सिस्टम कैसी है? संकल्पों को जब चाहो तब ब्रेक करो, जितना समय चाहो तब ब्रेक करो, समा लो, समेट लो। बहुत सारी चीजें समानी है, बहुत सारी चीजें समेट लेनी है एकाग्र करके। तो दो शक्तियां, दो संकल्प, दो चीजें संसार में जो यहां संभालो, दो कहां, एक संपत्ति एक संबंध। तो सारे संबंध एक में संभालो, और संपत्ति सुख शांति, सुख शांति आनंद, वो सब एक बात में, खुशी सब एक बात में। ये सोचना कि उसी में सारी संपत्ति है, तो वहां की जो संपत्ति पर पकड़ है वो थोड़ी सी कम होगी। यही वास्तविक में अविनाशी संपत्ति है। संगम युग की विशेषताएं तीन। सुशील भाई, संगम युग की विशेषताएं। कमलेश भाई, दीपाली बहन, गरिमा बहन, शिल्पा बहन, महेंद्र भाई, संगम युग की विशेषता, नशा, झूला, छलक फलक। नशा कौन सा? प्राप्तियों का नशा। सदा इस झूले में झूलते रहना, यह संगम युग की विशेषता है। सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता, इस झूले में झूलते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। एक दूसरा, चेहरे पर झलक फलक। तीसरा, नशा, नशा हो उसी का ही, प्राप्ति का ही नशा, और फिर वो चेहरे पर दिखाई दे। तो ये संगम युग की विशेषता है, ये भी बताया। तो सारी मुद्दे का सार क्या है? एक तो बताया स्थिति, यह स्थिति कर्मातीत स्थिति को पाना क्या है? तुम्हारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है तो दो शक्तियों की आवश्यकता है। ये दो शक्तियों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो विस्तार किया है उसको सार में समाना पड़ेगा। उसके लिए दो संकल्प, मैं आत्मा बिंदु और बाप बिंदु, सारे विस्तार को सार में समा दो। उसमें फिर एक विधि बताई है कि ये समझो कि सारी संपत्ति वही है, त्वमेव सर्व मम देव देव द्रविण त्वमेव, वो संपत्ति वही है, संपत्ति भी वही है, सारे संबंध भी उससे है। ये दो विधि है, ये जो विस्तार हुआ है इसको सार में लाने का। फिर संगम युग की ये जो विशेषता बताई है यहाँ पर, नशा रहना चाहिए कि तुम्हारे पास अविनाशी प्राप्ति है। यहाँ एक और उदाहरण दिया है संसार का, कौन सा? हाँ, सवारी का नहीं है यहाँ, दूसरा। उनको कितना राजा का उदाहरण दिया है ना, उनको नशा होता है संपत्ति का। राजा नशा होता है संपत्ति का, तो वैसे तुम्हारे पास अविनाशी प्राप्ति है। और क्या बोला मुरली में, और भी कोई पॉइंट है? वो तो सुबह हो गया, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से। तो ये हो गया पूरा मुरली। तो मुख्य रूप से जो पहले ये अनुभव करना है कि कर्मातीत स्थिति जो है इसकी डेफिनेशन को थोड़ा मन में रिवाइज करना है। शरीर छोड़ने से पहले कर्मातीत होना है, छोड़ने के बाद नहीं, अभी। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, शक्तिशाली स्थिति है, न्यारी प्यारी स्थिति है, बाप समान स्थिति है, संपन्न स्थिति है। ये सब एक ही स्थितियों के अलग अलग नाम दिए या उनकी कुछ बातें वहां पर बताई है। तो इसका अभ्यास करना और बार बार ब्रेक लगाने का अभ्यास, स्टॉप करने का अभ्यास। ये जो विस्तार हुआ है, हाँ एक बहुत अच्छा है कि ज्ञान का हम विस्तार करें, परंतु जब समाने के योग का समय आए तो वो चिंतन भी स्टॉप, वो चर्निंग भी स्टॉप, सीधा योग में जो सुबह अवस्था ही बताई है। बिंदु मतलब बिंदु, बीज रूप मतलब बीज रूप, कंबाइंड मतलब कंबाइंड, अशरीरी मतलब अशरीरी, विदेही मतलब डिटैच, देही मतलब एकदम से उसकी याद में कर्म कर रहे हैं। आत्माभिमानी अर्थात सात गुणों का चिंतन, फरिश्ता अर्थात इस देह हल्कापन, अव्यक्त अर्थात सब अव्यक्त भाव से परे। फटाफट फटाफट उस सार में आ जाना और फिर जरूरत पड़ी तो फिर उसका विस्तार भी करना, तुरंत उसका विस्तार करना सारा। विस्तार पूरा हुआ, सार में आ जाओ, सार विस्तार, विस्तार सार। बाबा ने कहा ये दो भी शक्ति है, इनकी भी आवश्यकता है, दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। योग करने के लिए विस्तार को सार कर दो और ज्ञान का चिंतन करने के लिए जो सार है उसका विस्तार करो। एक पॉइंट ले लो मुरली से, एक लाइन उठाओ और एक ही लाइन का चिंतन करो, ये क्यों कहा है, किस लिए कहा है। फिर पार्टियों से मुलाकात में उम्मीदवार ना उम्मीदवार, और सेकंड पार्टी से मुलाकात होलीहंस, पांडवों से मुलाकात में विजय विजय विजय, विजयी हो, स्वप्न में भी हार ना हो। स्वप्न में हार कब होती है? जब सारे दिन भर में हार होती है, वो हार का जो संकल्प है वो अंदर चला गया, अंतर मन ने स्वीकार कर लिया हार के संकल्प को, तो स्वप्न में वही निकलेगा। इसके लिए रिजेक्ट कर दो, किक ऑफ, किक कर दो उसको बहुत जोर से, अगर ऐसा संकल्प आता भी है, ठीक है। फिर मास्टर दाता बनो, इसमें हमने सुबह 14 बातें देखी थी, अभी हम पूछना चालू करते हैं सीधा। कमलेश भाई, कमलेश भाई कौन थे? 13 नंबर, मांगने वाले नहीं, मास्टर दाता अर्थात जो किसी से भी मांगता नहीं है। प्यार दो, सम्मान दो, केयर दो, अटेंशन दो, मुझे ध्यान रखो, कंधा दो, मुझे रोना है। कंधे में डाल के रोने को अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा आंसू बिसू, हम ऐसे कुछ हो गया और कोई ऐसे हाथ रख दे यहाँ तो आहा, कितना सुकून मिलता है। किसने हाथ विद रख दिया तो ना, तो किसी का हाथ चाहिए, कोई नहीं चाहिए, वो बदला लेगा फिर, तुमने हाथ, उसने हाथ रखा, अब तुमको भी रखना पड़ेगा क्योंकि व्यक्ति फिर बदला लेता है मदद करने के बाद। एक ये तो सबसे पहला है मास्टर दाता अर्थात रहम दिल है, फ्राक दिल है और मास्टर दाता है। नेक्स्ट क्या है? संपन्न मूर्तियां है, मास्टर दाता अर्थात संपन्न मूर्ति, मास्टर सुखदाता। संपन्न मूर्ति अर्थात कौन से खजानों से संपन्न है? अनुभूतियों के खजाने से संपन्न आत्मा। ये सबसे बड़े अनुभव जिसको हो गया वो सबसे अमीर आदमी है, उससे अमीर कोई है ही नहीं संसार में। और कौन था सुबह? श्याम भाई विश्व के ग्लोब पर खड़े रहकर क्या देंगे? सकाश देने वाले। शिल्पा बेन का मास्टर सुखदाता था, पर वास्तव में मुरली में जो शब्द था वो था खुशी बांटने वाले, खुशी। पर खुशी और सुख इंग्लिश में तो एक ही शब्द है ना, हैप्पीनेस। तो मास्टर सुखदाता या खुशी बांटने वाले। नेक्स्ट और कौन था सुबह? हाँ ये क्या है दीपाली बहन? राजा। राजा अर्थात बिना देह रह ही नहीं सकते। ठीक है बैठ जाओ, अभी हम वैसे गिनाते हैं। पहला था मास्टर दाता या फ्राक दिल, रहम दिल। दूसरा था अमूल्य खजाने से संपन्न। तीसरा प्रकाश भाई था, मास्टर सागर, नदी नाले नहीं। तुमको नदी नाले नहीं बनना है, सागर बनना है। चौथा था वो भाई उधर बैठे थे एक, शांति दाता। पांचवा था हीना बेन, स्नेह सहयोग और सहानुभूति देने वाले। पांचवा था छठवा शिल्पा बहन का था, सुखदाता या फिर खुशी बांटने वाला छठवा। सातवा वो शैलजा बहन थी वहां बैठी हुई, क्या नहीं डॉक्टर मेधा, मैं क्या थी? मैं सर्व खजानों से संपन्न और दूसरों को भी, पहले मैं सर्व खजानों से संपन्न और फिर दूसरों को माला माल करने वाली। फिर वहां पे शैलजा बहन थी अखंड महादानी। फिर उसके बाद में इधर हाँ आपका हो गया। फिर संदीप भाई था, संदीप भाई के दो कर्म थे, एक तो शक्ति, जिसको जो चाहिए वो देने वाला, जो जे वांछिल तो तेला हो, जिसको जो चाहिए वो देने वाला, और दूसरा गुणमूर्त बन गुण देने का कर्तव्य करने वाला। फिर उसके बाद में 11वां पॉइंट था शिवा भाई। शिवा भाई को क्या था? वही था, शिवा भाई को था गुणमूर्त बनकर गुण दान करना, ये कर्तव्य करने वाला। उसमें भी था वो पॉइंट और इसमें भी ये पॉइंट था। 11 12वां पॉइंट था इधर ये अरविंद भाई। क्या वंचित नहीं रहना चाहिए, कोई भी बाप का वर्षा हरेक को देना है, कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए। 13वां पॉइंट कमलेश भाई, किसी से भी कुछ नहीं लेना है, मांगना ही नहीं है किससे, मांगना बंद। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, जितना मांगो उतना हम नीचे गिरते जाते हैं, मांगने के संस्कार खत्म नहीं है, चलेगा। राणा प्रताप ने मांगा नहीं था घास की रोटी, जंगलों में रहा, परंतु झुकने को तैयार नहीं था उसके सामने, अकबर के सामने। फिर 14वां ग्लोब। तो ये विधि है, अभी ये जो फिट हुआ ना ब्रेन में, व्यक्तियों के साथ हमने जोड़ दिया, वो शायद ही कभी भूलता है। और यदि इसी मुरली को हम याद करें चीजों के साथ, इट इज नोन एज लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन अर्थात एक चीज को दूसरे चीज के साथ जोड़ देना, तो वो लंबा समय तक याद रहेगी। अगर हम खाली वैसे ही रखें तो ऐसे तो कितनी मुरली आई और चली गई। अभी ये किसी ने, आपने कोशिश की इसको याद रखने की, रिवाइज किया? जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों के साथ जुड़ चुका है वो माइंड। लॉ ऑफ एसोसिएशन एक होता है, दूसरा होता है लॉ ऑफ रिडिकुलस थिंकिंग, थोड़ा अनोखी सोच। जैसे रोज हम ओम शांति भवन में बैठे हैं, मुरली सुन रहे, ठीक है, एक दिन अचानक एक व्यक्ति जोकर का ड्रेस पहन के आ जाता है और नाचने लगता है, ठीक है, तो और मुरली की कोई पॉइंट वो बोलने लगता है। अब वो जो सीन है ना, उस व्यक्ति के साथ जुड़ गया। रोज मुरलियां होती है वो भूला है, पर वो दिन का याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हटके है, जो चीज हटके होती है वो याद रहती है। तो मुरली को ऐसा कुछ कर देना कि वो हटके हो जाए, क्योंकि एक तो है फर्स्ट लेवल चिंतन का लेवल है, एक लेवल है याद स्मरण का लेवल, फिर उसका स्वरूप बनना वो आगे की स्टेप्स है। पर पहले जिनको याद ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं करना क्या है, वो स्वरूप भी कैसे बनेंगे? जैसे मुरली आई, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, सबने मुरली पोड़ी है ये, पर वो चली गई हाथ से, हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए याद भी रखना है कुछ कुछ चीजें। और कैसे याद रखेंगे? व्यक्तियों के साथ जोड़ देना, स्थान के साथ जोड़ देना, चीजों के साथ जोड़ देना। जैसे एक पॉइंट है उसको जोड़ देना शांति स्तंभ के साथ, दूसरे पॉइंट को हिस्ट्री हॉल के साथ, तीसरे पॉइंट को बाबा के कमरे के साथ, चौथे पॉइंट को कुटिया के साथ, पांचवे पॉइंट को ब्रह्मा भोजन के साथ। पांच पॉइंट अगर याद रखनी है तो पांचों को पांच अलग अलग चीजों के साथ जोड़ दो। कोई भी चीज स्थान के साथ जोड़ दो। स्थान ये जैसे ए से लेकर जेड तक ये हमारा रोज का मार्ग है। यहां से हम जाते हैं रोज यहां, यहां पे सबसे पहले दरगाह आता है, फिर उधर वो हनुमान का मंदिर आता है, फिर वो सरस्वती मंदिर आता है, फिर वो उद्यान आता है, फिर वो विवेकानंद पार्क आता है, फिर वो भारत माता आती है। ऐसे ये सात चीजें हैं, ठीक है। अब मुरली में सात पॉइंट है, एक एक पॉइंट को इस चीज के साथ जोड़ते जाना। पर ये पहले पक्का चाहिए कौन सा है, ये गया तो वो भी गया, फिर ये पहले पक्का चाहिए और फिर इधर से इसको उसके ये पॉइंट को उसके ऊपर टंगा दो खूंटी पर। हाँ तो हाँ मतलब अब पहले एक फिक्स कर लो दस चीजें, ठीक है, और उसके बाद उनको हमेशा वहां टंगाते रहो, और जो पुराने टंगे हुए वो भूल जाना फिर, नहीं वो अपने आप रहते ही है। पर जैसे एक बार आज ये टॉपिक पर हम बोलते हैं, क्लास कराते हैं या चिंतन करते हैं, दूसरे दिन उसको भूल जाओ, अभी उसी को नया चिंतन करो फिर उसी पर, क्योंकि चिंतन में भी आसक्ति हो जाती है कि वो चिंतन बहुत था। अभी एक भाई हमको पूछ रहा था, ऊपर आ रहे थे, आपको जो नई आइडियाज आते हैं आप कहीं लिख के रखते हो क्या? हमने कहा नहीं। फिर ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि नई आइडिया आ गई और चली गई तो रिस्क उठाते हो आप क्योंकि जो नई पॉइंट्स आती है वो तो लिख के रखना चाहिए ना फटाफट, वो तो चली जाती है, फिर इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा लेते हो? रिस्क क्या, गई तो गई, नहीं आ जाएगी नहीं आने दो, क्योंकि चिंतन में भी आसक्ति हो जाती है कि जो पहले हमने चिंतन किया था और वो जो किया था ना वही इधर लाना है वापस। वो हो गया, वो उस दिन का था, उसको छोड़ दो, अभी नया मास्टर दाता दातापन की उस दिन में चिंतन वो किया था वो था, आज नया है, वो पुराना पूरा भूल जाओ, अभी फोकस नए पे पूरा। क्या अकाल पड़ा है क्या ज्ञान का या चिंतन का? नहीं ना। फिर तो इस तरह से मुरली का चिंतन करना है। ओम शांति।